धौला पुस्तक 15वीं लेक्चर नंबर 20। ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं
नमो लोये सवसाहूणं
सयलिन्दविन्दवन्दिय महिनन्दिय भौवपौभवणसण्डम् अहिनन्दनजिननाहम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा है उसमें 15वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या अभी हम आए थे पेज नंबर है 82 मंगलाचरण 41 पेज पर है, क्योंकि ये उपक्रम अनुयोग द्वार है ना, उसका मंगलाचरण है। पहले हमने निबंधन देखा, फिर प्रक्रम देखा, अब ये उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है 41 पेज से। देखो अपनी बात क्या हो रही थी, हम जरा देखते हैं। यहाँ उदीर्णा का प्रकरण चल रहा है अपना। उपक्रम में भी उन्होंने बंधन उपक्रम, उदीर्णा उपक्रम आदि चार बातें बताई थी। उसमें से उदीर्णा स्थानों की यहाँ चर्चा हो रही है। उदीर्णा स्थान का अर्थ होता है किसी मूल प्रकृतियों के, क्योंकि उत्तर प्रकृतियों की बात है ना, मूल प्रकृतियों में जब उदीर्णा स्थान कहे थे तो 8 प्रकृतियों की उदीर्णा, 7 की, 6 की, 5 की, इस तरह से हमने देखा था। अब यहाँ एक एक जो मूल प्रकृति है उसके उत्तर प्रकृतियों के स्थानों की चर्चा है। जैसे ज्ञानावरण में 5 प्रकृति एक ही स्थान, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है, वैसे दर्शनावरण में 4 की उदीर्णा का एक स्थान है जो 12वें में होता है, 5 की उदीर्णा का एक स्थान है जब किसी एक निद्रा के उदय सहित है, तो वो भी कहीं पर भी हो सकता है। यानी 4 की उदीर्णा का तो अकेले 12वें में नहीं, पहले भी गुणस्थान में अगर निद्रा का उदय न हो तो अन्य 4 का उदय है, उसकी उदीर्णा भी है। और जब किसी एक निद्रा की उसका उदय उदीर्णा हो रहा है तब 5 का स्थान होता है, इसलिए 2 ही स्थान है। वेदिनी में स्थान नहीं, एक ही कोई एक इधर उदीर्ण रूप होती, उदय रूप है, उदीर्ण रूप होगी। मोहिनी की बात अपनी चल रही है। अब मोहिनी के उदीर्ण स्थान में उन्होंने उल्टे क्रम से, अभी हम पहले गुणस्थान से ऊपर ऐसा नहीं ले रहे, एक प्रकृति को उदीर्णा इस तरह से उन्होंने बताई। यानी वो कब होती है एक प्रकृति को उदीर्णा, जब वेद का उदय मिट जाता है और किसी एक कषाय का उदय है तो उसी की उदीर्णा भी होती है। तो वो एक प्रकृति का प्रवेशक, प्रवेश यानी उदीर्णा के लिए, उदीरक के लिए प्रवेशक शब्द आया था। दो प्रकृतियों का जब अंतर किए जाता है, 9वें गुणस्थान में अंतर बनाया जाता है, और एक वेद और एक कषाय का उदय है, 3 प्रकृतियों का प्रवेशक, यानी 9वें गुणस्थान की शुरुआत से ही अंतर के पहले भी 2 ही प्रकृतियों का उदय, एक वेद और एक कषाय, 3 प्रकृतियों का कोई प्रवेशक नहीं है, 4 प्रकृतियों का प्रवेशक, यानी 8वें गुणस्थान में एक वेद है, एक कषाय है और एक युगल लिया, परंतु भय जुगुप्सा का उदय नहीं है ऐसा जीव लिया। हो सकता है किसी को, परंतु ऐसा जीव लिया जिसको भय और जुगुप्सा दोनों का उदय नहीं है, एक कषाय, एक वेद और एक युगल, ये 4 प्रकृति एक स्थान हो जाएगा। तो युगल में कोई भी ले सकते, हास्य रति या शोक रति। अब यहाँ कहते हैं, देखो पेज नंबर 81 पर नीचे से पांचवी लाइन में चार प्रकृतियों के प्रवेशक को आदि करके दस प्रकृतियों के प्रवेशक तक इन स्थानों का प्रवेशक निरंतर है। यानी केवल वो तीन प्रकृति का उदय वाला नहीं था, बाकी चार वाला, पांच वाला, छह वाला, सात वाला सब निरंतर है, यानी सभी स्थान पॉसिबल है। अभी उसमें ये स्थान यानी नंबर ऑफ प्रकृतियां बताई, परंतु वो प्रकृतियां जुदी जुदी हो सकती है, तो उसके भंग बताए जाते हैं। वो इस तरह से इनमें एक प्रकृति के प्रवेशक के चार भंग है। यानी संज्वलन क्रोध के उदय की अपेक्षा एक भंग, संज्वलन मान के उदय की अपेक्षा द्वितीय भंग, संज्वलन माया के उदय की अपेक्षा तृतीय भंग, और संज्वलन लोभ के उदय की अपेक्षा चतुर्थ भंग। ये समझ में आवे ऐसी सरल है बात। अब दो प्रकृतियों के प्रवेशक के बारह भंग है। एक प्रकृति के चार होते हैं और उसमें वेदों की अपेक्षा लगाए, वेद तीन अलग अलग, पहले चार गुणा ये तीन, यानी एक एक वेद के साथ चार चार कषाय हो सकते हैं, इस तरह उसके बारह भंग हो जाएंगे। तो दो प्रकृतियों के प्रवेशक के बारह भंग है। अभी हमको चार प्रकृतियों के प्रवेशक देखना है, तो चार प्रकृतियों के प्रवेशक के चौबीस भंग होते हैं, क्योंकि हमने देखा था चार, ये यानी एक प्रकृति के हमने जो चार देखे, दो प्रकृति के जो बारह देखे थे, अब उसमें आठवें गुणस्थान के अंत में किसी के हास्य रति का उदय है और किसी का शोक रति का है, तो उसकी उदीर्णा होती है। तो पहले बारह और ये दो पॉसिबिलिटीज, तो चौबीस भंग उसके होते हैं। यहां तक तो सरल है। अब आगे जो पांच प्रकृतियों के है, वो अलग अलग जगह पर पांच प्रकृतियां बन सकती है, तो उसमें प्रवेशक के चार चौबीस है, यानी चौबीस में और चार विकल्प लगा लेना पांच प्रकृतियों में। अब ये चार प्रकृति जो अभी हमने देखे थे, ये पांच प्रकृति स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है उसकी बात अभी हम देखेंगे। हमने देखी भी थी कि आठवें गुणस्थान में, अभी हमने जो चार का देखा था ना, एक वेद, एक कषाय, एक युगल, उसमें एक भय डालो तो पांच होगा, ये एक भंग हुआ। जुगुप्सा को डालो भय के बदले, दूसरा भंग होगा। यहाँ सातवें गुणस्थान में हमने देखा था एक सम्यक प्रकृति का उदय है, उसको एक बढ़ाया। सम्यक प्रकृति का उदय है, एक कषाय है, एक वेद है और एक युगल है, परंतु भय जुगुप्सा दोनों नहीं है। यानी जो एक प्रकृति बढ़ाना है वो सम्यक प्रकृति की बढ़ाए। या पांचवें गुणस्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, एक वेद है और दो कषाय है, एक युगल है परंतु भय जुगुप्सा नहीं है, ये हमने चार विकल्प देखे थे। इसके लिए मैंने बताया था कि हम पहले गुणस्थान से अगर उसके भेदों की चर्चा करेंगे उदय की, तो ये बात ख्याल में आई जल्दी। जैसे पहले गुणस्थान में है, तो पहले गुणस्थान में हमने देखा था कितने कितने का उदय हो सकता है। देखो देखो, उसके लिए उदय के कूट हमको देखना है। हाँ देखो देखो, ये उदय के कूट, मोहिनी के जो उदय के कूट है, एक मिथ्या तो है, कषाय चारों का यानी क्रोध मान माया चार या चार लोक, एक वेद, एक युगल और भय जुगुप्सा दोनों हो सकते हैं, या अकेला भय या अकेला जुगुप्सा, दोनों भी नहीं। अब मिथ्या तो गुणस्थान में कौन कौन से हो गए थे, इनकी टोटल करनी है। पहले तो रेगुलर की बात करते हैं, एक अधिक चार पांच, एक छह, छह दो आठ, आठ अगर जूरियो लगते तो आठ होगा। एक भय का लेंगे या एक जुगुप्सा का लेंगे तो नौ लेंगे, और दोनों को लेंगे तो दस हो जाएंगे। परंतु यहाँ दूसरी और एक पॉसिबिलिटी है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जो पहले गुणस्थान में आता है, आवली काल तक उसका उदय नहीं है, उदीर्णा भी नहीं है, तो यहाँ तीन लेना है हमको, तो वो सात वाला भी होगा। तो पहले गुणस्थान में हम देखते हैं सात प्रकृति वाला भी होगा, आठ का भी होगा, नौ का भी होगा और दस का भी होगा। ये पहले गुणस्थान की बात है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं है, बाकी पोजिशन वही है, तो वो क्या हो जाएगी, हाँ आठ एक चार एक पांच दो सात, सात आठ या नौ, तो दूसरे गुण स्थान में वो सात आठ नौ का भंग होगा। तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में क्या होगा, एक सम्यक मिथ्या तो उदय रूप होगी परंतु कषाय में कम हो जाएगा, यानी वहां चार के बदले तीन हो जाएगा, तीन एक चार एक पांच दो सात, सात या आठ या नौ, तीसरे गुण स्थान में भी सात आठ या नौ। पर पहले उसके भंग अलग अलग है, वहां प्रकृतियां जुदी थी, यहाँ प्रकृतियां जुदी है। चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है, देखो चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति अगर लेते हैं और यहाँ तीन तीन लेते हैं हम, बाकी बात ऐसी रहेगी, तो उसमें भी तीन एक चार एक पांच दो सात, सात आठ और नौ हो जाएगी, परंतु वहां क्षायिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि होगा तो छह का भी भंग होगा, इसलिए उसमें छ सात आठ नौ ये चार विकल्प है। अब पांचवें गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में अभी दो कषाय होते हैं, सम्यक प्रकृति लेते हैं तो एक दो तीन एक चार दो छ, छ सात और आठ होगा, परंतु वहां क्षायिक होगा, तो क्षायिक होगा तो ये नहीं होगा, तो पांचवें में दो कषाय एक वेद एक युगल, दो एक तीन दो पांच, पांच छ और सात, यानी वहां पांच छ सात और आठ, ये पांचवें गुणस्थान में। छठे और सातवें में क्या होगा, छठा सातवां मां, छठे सातवें आठवें में वही होगा, देखो वहां पर भी हम सम्यक प्रकृति सहित लेते हैं तो छठा गुणस्थान है, तो यहाँ कषाय एक हो जाएगा, एक सम्यक प्रकृति एक कषाय दो, तीन दो पांच, पांच छ और सात, और क्षायिक होगा तो चार पांच छ सात, आठवें में, आठवें में क्या होता है, आठवें में तो यह उसका उदय ही नहीं है सम्यक प्रकृति का, एक कषाय है एक वेद है एक युगल है, तो उसमें चार पांच और छ ये तीन ही विकल्प है, चार पांच और छ, ख्याल में तीन बार। नौवे में अब ये भय जुगुप्सा भी नहीं युगल भी नहीं है, केवल एक, यानी तीन वाला स्थान ही नहीं है, दो वाला होगा, तो नब्बे में केवल दो वाला होगा, और जब अपगत वेदी होता है तो एक वाला होगा, यानी एक और दो ऐसा लिखेंगे नब्बे गुण स्थान में, एक दो वाले स्थान होंगे। दसवें में एक का स्थान होगा, दसवें में केवल एक का स्थान होगा। अब हम इसके भंग देखते हैं, एक वाला स्थान कहाँ कहाँ है, दसवें में भी है और नब्बे में भी हो सकता है। दसवें में एक ही भंग है सूक्ष्म लोक का, नवे में जब एक प्रकृति वाला उदय है उदीर्ण है तो उसमें क्रोध मान माया लोभ कोई भी हो सकता है। दो प्रकृति का है तो उसमें भंग कितने हो गए, एक वेद यानी तीन वेद और चार कषाय बारह हो सकते हैं, तीन वाला स्थान नहीं है। अब देखो हमने अभी चार वाले देखे थे, चार वाला कहाँ कहाँ है देखो, चार वाला आठवें में भी हो सकता है छठे सातवें में भी हो सकता है, तो आठवें में जो हमने चार वाला देखा था उसमें भंग कितने हैं, देखो चार प्रकृति के हमने देखो क्या क्या देखे थे, ये यहाँ देखे थे ना, दो प्रकृति वाले कौन कितने देखे थे, बारह देखे थे, और चार हुए ने एक युगल बढ़ा तो बार दुनी चौबीस हो जाएंगे, यानी चौबीस का एक भंग हुआ हास्य के साथ, चौबीस का एक भंग हुआ शोकरति के साथ, अब ये चार का यहाँ पर भी भंग हो सकते हैं, तो ये चार के कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ तो युगल का डिफरेंस तो है ही है, परंतु वहाँ तो हमने देखा ना सातवें में सम्यक प्रकृति को एक एक्स्ट्रा करना, तो सम्यक प्रकृति को बुझाइए, एक वेद एक कषाय एक युगल, और भय जुगुप्सा नहीं है ऐसा लिया, आठवें हमने भय जुगुप्सा सहित वाला लिया था और यहाँ भय जुगुप्सा रहित वाला लेना है, नहीं वो पांचवे की बात, पांचवे में हाँ, ये चौथे की, चार प्रकृति का, सॉरी हाँ चार प्रकृति का जो हमने देखा था ना, पांच प्रकृति के हमने चार विकल्प देखे, सॉरी चार प्रकृति के चौबीस ही भंग हुए थे, छठे सातवें में वो क्षायिक समय दृष्टि का वो भंग यहाँ वही होता है जो आठवें में है चार का, वही उसमें चार का भंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी आठवें में तो क्षायिक समय तो या उपशम समय दृष्टि था, वही बात यहाँ पर ली थी। अब पांच के भंग हमको देखना है, पांच का भंग देखो यहाँ पर है आठवें में, पांचवा भंग, पांच का भंग छठे सातवें में भी है और पांच का भंग पांचवें में भी है, ख्याल में आती। आठवें का जो पांच का भंग है उसमें भय जुगुप्सा का विकल्प है, यानी आठवें में पांच के दो होते हैं, भय सहित या जुगुप्सा सहित, ये आठवें का हुआ। छठे सातवें में पांच लिया तो वहां पांच कैसे लिए, भय जुगुप्सा से रहित लिया परंतु सम्यक प्रकृति को बढ़ाया था, और पांचवें में पांच कैसे लिया, क्षायिक सम्यक तो रखा परंतु भय जुगुप्सा दोनों को बढ़ाया, ये हम अलग अलग विकल्प देख रहे हैं। ये बात अपने परसों हुई थी, हाँ हम जा गए उसके पहले, यानी पांच प्रकृति के हमने चार अलग अलग विकल्प देखे, चार प्रकृति के चौबीस भंग थे और यहाँ पांच प्रकृति के और चार अलग अलग भंग उसमें ऐड करना तो 24 गुना चार हो जाएगा, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। अब उसके पहले आगे देखते हैं, ये पांच प्रकृति के चार ने, पांच प्रकृति के चार भंग देखे हमने, 24 गुना चार इतने भंग होते हैं। अब छह प्रकृतियों के प्रवेशक के सात 24 भंग होते हैं। अभी छह प्रकृतियां यहाँ देखो, देखो छह प्रकृतियों आठ गुण स्थान, आठवें गुण स्थान में छह कैसे निकाले, एक कषाय है एक वेद है यानी उसके बारह हो गए, एक युगल, युगल के भंग दो हो सकते हैं, बार दुनी चौबीस हुए। अभी चौबीस में छह लेना है यहाँ पर, तो वहां छह प्रकृति का एक स्थान कौन सा हुआ, भय और जुगुप से दोनों लेना, फिर से आठवें गुणस्थान की बात है, आठवें गुणस्थान में एक कषाय है एक वेद है एक युगल है, यानी चार त्रिक बार बारह दुनी चौबीस, यहां तो चौबीस भंग हुए। अभी आठवें गुणस्थान में हमको छह प्रकृतिक स्थान चाहिए, भय जुगुप्सा दोनों को लेना है, तो 24 में ये छह प्रकृति का एक स्थान, एक दो दो चार दो छ, ये आठवें का एक हुआ भंग। हमको सात अलग अलग चाहिए पॉसिबिलिटीज, छह प्रकृति के सात भंग लेना है तो 24 इंटू सात हो जाएंगे, तो ये आठवें में हमने छह का एक स्थान देखा। अब सातवें गुण स्थान में एक कषाय एक वेद एक युगल, ये तो 24 तो कांस्टेंट रखना। अब ये 24 के साथ सातवें गुणस्थान में सम्यक प्रकृति एक बढ़ाओ और एक भय को ले लो, यानी एक दो तीन दो पांच एक छह हो गया, यानी सातवें गुणस्थान में सम्यक प्रकृति और भय को बढ़ाया, एक बात। दूसरी पॉसिबिलिटी, सातवें गुणस्थान में सम्यक प्रकृति और जुगुप्सा को ले लो, ये भी छह प्रकृतिक स्थान हुआ। फिर अभी क्षायिक समय दृष्टि को लेना है, पांचवें गुणस्थान वर्ती या सातवें में क्षायिक ले सकते हैं, सातवें वाला क्षायिक लिया, एक कषाय एक वेद एक युगल, एक दो दो चार दोनों लेना भय जुगुप्सा, ये छह प्रकृति वाला क्षायिक समय दृष्टि या उपशम समय दृष्टि सातवें गुणस्थान वाला हो जाएगा, इन्हें आठवें में देखे और सातवें में दो देखे, सातवें में तीन देखे हमने, सम्यक प्रकृति प्लस भय, सम्यक प्रकृति प्लस जुगुप्सा, या दोनों ही नहीं है और भय जुगुप्सा दोनों को लिया। अब पांचवें गुणस्थान में वाला शायिक वाला लिया था, पांचवें गुणस्थान में भी छह वाला एक स्थान है, वो कौन सा है? शायिक समय दृष्टि है, समय प्रकृति का उदय नहीं है, पर पांचवा गुणस्थान है तो एक कषाय बढ़ा दिया, दो कषाय होते हैं, परंतु विकल्प चार ना, चार त्रिक बारह, दो विकल्प चौबीस। अब इसके साथ दो एक तीन दो पांच, इसमें से एक को ले तो छह प्रकृति का होगा, भय के साथ जुगुप्सा के साथ भी छह प्रकृति का होगा। या दूसरी पद्धति से अगर बढ़ाना है हमको तो क्षायिक को लेना है, नहीं क्षायिक को ही लिया ना हमने, पांचों गुणस्थान में क्षायिक को ही लिया था। या सातवें वेदक को लेना भी, पांचवें गुणस्थान में वेदक को लेना, पांचवें गुणस्थान वाला वेदक ने एक सम्यक प्रकृति बढ़ी, एक दो तीन, एक चार दो छः, फिर भय जुगुप्सा रहित वाला लेना, तो छः का ये स्थान हुआ। इस तरह से इसके भंग देख रहे के छह प्रकृतियों के प्रवेशक के सात चौबीस भंग होते हैं, समझ में आते ना कैसे निकाले हैं। अब आगे पढ़ते हैं, सात प्रकृतियों के प्रवेशक के। अभी हमने देखा सात प्रकृति कहाँ कहाँ देखी, अभी हमने जो उदय के कूट निकाले थे, पहले गुणस्थान में भी है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवे में भी है, और ये छठे सातवें में भी है। तो हमें इतने सारे विकल्प देखना है। तो सात प्रकृतियों के प्रवेशक के दस चौबीस भंग होते हैं, तो वो दस भंग कैसे निकाले हमने? पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का विसंयोजक लेना है, उसके साथ होते हैं, और भय जुगुप्सा से रहित लेना। दूसरे गुणस्थान में हमने देखे ना चार, यहाँ देखो दूसरे गुणस्थान में कैसे देखे थे हमने, चार कषाय लिए थे, पहले गुणस्थान के साथ समझ में है ना, दूसरे में चार एक पांच दो सात और भय जुगुप्सा रहित, ये दूसरे गुणस्थान में हो गया। पहले गुणस्थान का एक, दूसरे गुणस्थान का एक। अब आगे तीसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में यहाँ सम्यक प्रकृति हुई और यहाँ तीन तीन कषाय हुए, वहां भी तीन एक चार एक पांच दो सात, भय जुगुप्सा रहित लिया, ये तीसरा भंग हुआ। चौथे गुणस्थान में देखो, चौथे गुणस्थान में भी यहाँ तीन कषाय है, और चौथे गुणस्थान में देखो तीन एक चार एक पांच दो सात, यहाँ अगर सम्यक प्रकृति लेते हैं, तीन एक चार एक पांच दो सात, भय जुगुप्सा रहित लेना, और चौथे गुणस्थान में अगर सम्यक प्रकृति को नहीं लेते हैं, शायिक या औपशमिक लेना है, तो एक भय को ले या एक जुगुप्सा को लो, इस तरह से वहां दो भंग हो जाते हैं। हाँ, चौथे गुणस्थान में तीन भंग हो जाएंगे। देखो पहले का एक, दूसरे का एक, तीसरे का एक, चौथे के तीन हो गए, पांचवें गुणस्थान में भी हमने देखा था सात का भंग है, तो पांचवें गुणस्थान में सात का कैसे लेंगे हम? देखो यहाँ दो कषाय हो जाएगी, दो एक तीन एक चार, दो एक तीन एक चार दो पांच, पांच और यहाँ दो लेना पड़ेगा सात। यहाँ अगर वहां पर क्षायिक को लेते हैं, अकेले भय को और अकेले युगुप्सा को लेना, नहीं दो एक तीन अंदर पांच दो सात, दोनों को सहित लेना पड़ेगा, दोनों सहित लेना पड़ेगा। सम्यक प्रकृति लेते हैं तो एक एक को लिया था इस तरह से, और छठे सातवें में भी सात वाला है। देखो पांचवें गुणस्थान में पहले हमने क्षायिक को लिया, दो एक तीन अंदर पांच दो सात हुआ, और सम्यक प्रकृति को लिया तो इसको एक एक को लिया, उसके भी दो एक तीन एक चार दो छह सात, ये सात तीन हुए ना उसके भी, पांचवे के भी तीन तीन हुए। हाँ छठे सातवें में भी लेना, छठे सातवें में कशा एक ही रह जाएगी, एक दो तीन पांच दो सात भाई जी गुप्सा दोनों को लेना, एक उसमें भंग हो जाएगा। देखो पहले में एक लिया, दूसरे में एक लिया, तीसरे में एक लिया, चौथे में तीन लिए, पांचवे में तीन लिए और छठी सातवें का एक भंग लिया हमने। आगे बढ़ते हुए ये 24 के 10 भंग हो गए, 8 प्रकृतियों के प्रवेशक के 11 24 भंग होते। अभी 8 प्रकृतियों के कहां कहां लिए देखो हमने, पहले गुणस्थान में 8 का है, दूसरे में 8 का है, चौथे में 8 का है, पांचवे में भी 8 का है। अब इसके भंगल निकालना है। अब पहले में 8 का कौन सा है हमने देखा था, है ना, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवे में है। क्योंकि अभी हम 8 प्रकृतियों के बन देख रहे हैं, ये 7 प्रकृतियों के देखे थे हमने, अब 8 प्रकृतियों के देखना है। 8 में पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवे में देखना है। तो 8 प्रकृतियों का पहले में देखते हैं भंग कितने हो जाते हैं, फिर से शुरुआत से पहले गुणस्थान में हमको देखना है। पहले गुणस्थान में एक मिथ्या तो प्रकृति है, 4 कषा है, एक युगल है, सॉरी एक वेद है, एक युगल है, यानी 1 4 5 1 6 2 8 सॉरी 4 1 5 1 6 2 8 भाई जी गुप्सा रहित लेना, यानी उसमें एक ही भंग होगा। पहले गुणस्थान में 8 प्रकृतियों का एक ही भंग होगा। विसंयोजना वाला अगर लेते हैं यहाँ पर अनंतानुबंधी की विषय है, 3 1 4 1 5 2 7 तो उसमें 2 भंग हो गए, तो पहले गुणस्थान में 3 भंग हो गए। संयोजक वाला दूसरे गुणस्थान में, उसमें भी 8 का जो भंग है दूसरे गुणस्थान में, यहां तो 4 हो गए ही, पर यहां मिथ्यात्व नहीं है दूसरे गुणस्थान में, तो 4 1 5 2 7 उसमें भय जुगुप्सा वाले 2 भंग हो गए, दूसरे गुणस्थान में 2 भंग 8 प्रकृतियों के। तीसरे गुणस्थान में, अभी तीसरे गुणस्थान में एक कषाय नहीं है परंतु सम्यक मिथ्यात्व है, तो 3 1 4 1 5 2 7 उसमें भी 2 भंग 8 के करने के लिए, यानी तीसरे गुणस्थान में 2 भंग। अब चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में भी एक कषाय कम है, यह सम्यक प्रकृति समय प्रकृति लेते हैं, तीन एक चार एक पांच और सात, इसमें से आठ आठ लेना है। अगर क्षायिक लेते हैं तो तीन एक चार दो छः, और दोनों ही लेना पड़ेगा, तीन मंग उसमें होंगे। पांचवें गुणस्थान में हाँ एक ही होगा, क्योंकि पांचवें में यहाँ दो लेते हैं, अगर यहाँ सम्यक प्रकृति लेते हैं तो दो एक तीन एक चार दो छः, और ये दोनों लेने पड़ेगा। तो पांचवें में एक ही भंग होगा। तो पहले के तीन, दूसरे तीसरे के दो दो, चार तीन सात, फिर चौथे में तीन, सात तीन दस, और पांचवे में एक, ग्यारह भंग हो गए। समझ में आती बात? अब आगे देखते हैं। नौ प्रकृतियों के प्रवेशक के छह चौबीस भंग होते हैं। अब हमने देखा था नौ प्रकृति वाला स्थान कहाँ कहाँ होगा। देखो हमने पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो नौ प्रकृतियों के छह चौबीस भंग होते हैं। जो पहले में जो हमने नौ का जो देखा था, नौ प्रकृतियों का, तो पहले में कैसे घटित करेंगे हम? पहले में यहाँ चार रखना है, एक मिथ्या, चार एक पांच एक छ, चार एक पांच छ दो आठ, आठ और नौ और दस, नौ और देखो चार एक पांच एक छ दो आठ और नौ, यानी भय के साथ या जुगुप्सा के साथ दो भंग हो गए पहले पहले में। दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में तो ये तो चार ही रखना, यहाँ कुछ नहीं है, चार एक पांच दो सात और दो नौ, वहां एक ही भंग होगा क्योंकि भय जुगुप्सा दोनों को लेना पड़ेगा। तीसरे गुणस्थान में प्रकृति तीन ही हो जाएगी और सम्यक मिथ्या तो हो जाएगा, तीन एक चार एक पांच दो सात, और वहां पर भी भय जुगुप्सा दोनों को लेना है, तो एक भंग तीसरे में भी होगा। अभी चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में अगर सम्यक प्रकृति को लेते हैं, तीन एक चार पांच दो सात, सात और दो नौ, उसमें भी एक ही भंग होगा। संयोजक में हमने देखा था पहले गुणस्थान में, विसंयोजन करने वाला, तो एक और तीन हो जाएगा, तीन एक चार एक पांच दो सात और दो नौ, देखो देखो फिर से देखो, पहले गुणस्थान में अगर चार लेते हैं, चार एक पांच एक छः दो आठ, और फिर इसके साथ एक एक, ये दो भंगो, और अगर उसको लेते हैं तीन, तो इसको दो लेना है, हाँ यानी वहां तीन भंग हो गए, पहले गुणस्थान में तीन भंग हो गए। दूसरे गुणस्थान में तो यहाँ चार फिक्स लेना है, चार एक पांच दो सात, और उसमें एक ही भंग होगा। तीसरे में भी एक हम भंग देखा था, चौथे में भी एक देखा था हमने। पांचवे में देखना, पांचवे में कहाँ है? चौथे में हो गया ना, तो तीन तीन छह ही हो गए ना, छह चाहिए। तो नौ प्रकृति के छह भंग हो गए, चौबीस इंटू छह। अब दस प्रकृतियों के प्रवेशक के एक चौबीस भंग होते हैं, उसमें एक ही है, क्योंकि पहले गुणस्थान में कौन सा लेना है? दस वाला, भयजुगुप्सा दोनों सहित वाला लेना है, इसलिए दस प्रकृति का एक स्थान। एक ही भंग होगा, चौबीस इंटू एक, यानी उसके चौबीस भंग हो गए। वैसे इन भंगों के प्रमाण की प्ररूपणा के लिए यह गाथा कही जाती है, वह इस प्रकार है। अब ये गाथा भी यहाँ ऊपर एक नंबर की, उसको पहले पढ़ेंगे हम। एक छक्के कार स दस सत्त चुक में चेव दो सुय बार स भंगा एक कम्य होती चारी दस नौ आठ सात छ पाँच और चार प्रकृतियों के प्रवेशक के क्रम से एक छ ग्यारह दस सात चार और एक इतनी शलाकाओं से युक्त चौबीस भंग है। नहीं समझे? जब हम कहें दस का एक एक है तो एक इंटू चौबीस यानी चौबीस भंग हो गए। नौ प्रकृतियों के छह बताया तो छह इंटू चौबीस भंग हो गए। आठ प्रकृतियों के ग्यारह इंटू चौबीस भंग हो गए। सात प्रकृतियों के दस इंटू चौबीस हो गए। छह प्रकृतियों के सात इंटू चौबीस हो गए। पांच प्रकृतियों के चार इंटू चौबीस हो गए और चार प्रकृतियों के प्रवेशक के एक इंटू चौबीस भंग हो गए। दो प्रकृतियों के प्रवेशक के बारह तथा एक प्रकृति के प्रवेशक के चार भंग होते हैं। दो लाइन में उन्होंने पूरा बता दिया। अभी वो कहां क्या होते हैं उसको बताएंगे। इस प्रकार स्थान समुत्कीर्तना समाप्त हुई। बस स्थान होते हैं बस इतना कह दिया उन्होंने और उन स्थानों में कितने भंग है वो भी बता दिया। मोहनी की बात चल रही थी। स्वामित्व की प्ररूपना में ये दो सूत्र गाथाएं यथा ये दो नंबर की गाथा पढ़ेंगे ऊपर। सत्तादिदसुक्कसम मिच्छे सण मिसेन उक्कसम छादीय नवुक्कसम अविरद सम्मत्तमादिस। आगे भी पढ़ेंगे। पंचादि अठ निहणा विरदा विरदे उदीरण अठाणा एकादि तिरहिणा सत्तु कसाय विरदस। देखो यहाँ सात को आदि लेकर उत्कर्ष से दस प्रकृतियों तक के चार स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। सत्तादि दसुक कसम मिच्छे मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान में सण मिश्रय सने ने अनंतानुबंधी यानी वो साधन में और मिश्र में नौ कसम यानी सात से आदि लकर रखना नौ तक होते हैं उत्कृष्ट तक। और छादीय नौ कसम फिर सात को आदि लेकर उत्कर्ष से नौ तक के स्थान सासाद मिश्र होते हैं और छह प्रकृतियों का आदि लेकर उत्कर्ष से नौ तक चार स्थान अविरत समय दृष्टि के होते हैं। छादीय नौ कसम अवरद सम्मतम आदिश फिर पंचादि अठ निहणा पांच को आदि लेकर आठ प्रकृतियों के चार उदीर्णा स्थान विरता विरत गुण स्थान में होते हैं। एगादि तिय रहिदा एक को आदि लेकर उत्कर्ष से त्रि प्रकृतिक स्थान से रहित सात प्रकृतियों तक के छह उदीर्णा स्थान संयत जीव के संयत कहने से छठे से लेकर ऊपर के लिए उन्होंने यानी उसमें एक का दो का चार का पांच का छह का और सात का स्थान होता है संयत में कह दिया उन्होंने। तो कहां क्या होता है वो हमने देख लिया। अभी हमने यही उसका एक टेबल बनाया था यही बात अभी बताए थे। पहले गुणस्थान में सात से लेकर दस तक होते हैं दूसरे में और तीसरे में सात से लेकर नौ तक होते हैं चौथे में छः से लेकर नौ तक होते हैं पांचवे में पाँच से लेकर आठ तक होते हैं और संयतों के एक दो चार पाँच छः सात ये स्थान होते हैं। विशेषार्थ इसी का विशेषार्थ बता रहे थे। यहाँ सात प्रकृतियों को आदि लेकर दस प्रकृतियों तक के जो चार उदीर्णा स्थान मिथ्या दृष्टि के बतलाए गए हैं वो इस प्रकार से संभव है। अभी हमने वो उदय का कूट देखा था ना वैसा देना मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क में से एक यानी या क्रोध या माया मान या मान या माया या लोभ, ये अनंतानुबंधी चतुष्क में से एक, अप्रत्याख्यान चतुष्क में से एक, प्रत्याख्यान चतुष्क में से एक और संज्वलन चतुष्क में से एक, तीन वेदों में से कोई एक। पर चतुष्क में से एक एक कहेंगे, पर चारों चतुष्क के जो है ना, या तो क्रोध या मान या माया या लोभ, ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी का क्रोध और उसका मान, ऐसा नहीं होगा। तीनों चारों का एक कोई क्रोध या मान या माया या लोभ, तीनों वेदों में से देखा हमने। हास्य रति और अरति शोक में से एक युगल तथा भय व जुगुप्सा दोनों को लिया। इन दस प्रकृतियों का उदीर्णा स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में पाया जाता है। इन दस प्रकृतियों में भय व जुगुप्सा में से किसी एक के बिना नौ प्रकृतियों का स्थान होता है। भय व जुगुप्सा इन दोनों के बिना आठ प्रकृतियों का स्थान होता है। यहाँ तक तो ठीक है। तथा भय जुगुप्सा व कोई एक अनंतानुबंधी कषाय इन तीन प्रकृतियों के बिना सात का स्थान होता है। यानी वो नहीं है, तीन प्रकृतियों के बिना सात का स्थान होता है। आपका वाक्य पढ़िए। मिथ्या तो गुणस्थान है पर अनंतानुबंधी का उदय रहित बताया। क्यों? अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद वो जीव समय दृष्टि वो मिथ्या तो में आ गया। अब अनंतानुबंधी का नया बंध भी शुरू होगा और उल्टा संक्रमण वो अप्रत्याख्यान में से संक्रमण भी होगा क्योंकि बंध होने लगा है, परंतु उसका उदय आवली तक नहीं होगा। क्या लिखा है? हाँ। नहीं, बिना सात का ये रह गया। उन्हें हाँ वो एक आगे का वाक्य बराबर है, बीच वाला एक वाक्य पूरा निकाल दो, पूर्ण निकाल दो। हाँ ये समझ में। अनंतानुबंधी बिना क्यों कहा? मिथ्यात्व में आया हुआ। हाँ ये कावली तक। एक आवली काल तक उसका अनंत अनुबंधी का उदय नहीं। और उसी समय अगर भय जुगुप्सा का भी उदय न हो तो उस सात वाला हो सकता है। ये तीन स्थान भी मिथ्या दृष्टि के ही संभव है। ये वो वाक्य है वहाँ, ये तीन स्थान भी मिथ्या दृष्टि के ही संभव है। ये कौन से तीन स्थान? देखो देखो इन दस प्रकृतियों का देखो, पहले में दस का है, नौ का है, आठ का है, सात का है, चार है ना।
चार
यहाँ शासन का कहाँ लिया बीच में? आगे शासन दृष्टि अच्छा बाद में वो उन्होंने जोड़ दिया, पहले तीसरा का कहा फिर दूसरे का कहा है। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। ये तीन स्थान में समय मिथ्या दृष्टि के ही संभव है। उपयुक्त तो 10 प्रकृतियों के स्थान में से एक अनंतानुबंधी कषाय को कम करके मिथ्यात्व तो प्रकृति के स्थान में सम्यक मिथ्यात्व तो के ग्रहण करने पर 9 प्रकृतियों का स्थान होता है। ये तीसरे गुण स्थान में बताया, क्योंकि तीसरे में भी 7, 8, 9 तीन स्थान है ना। इसमें भय व जुगुप्सा में से एक के बिना 8 का तथा दोनों के बिना 7 का स्थान होता है, यानी तीसरे गुण स्थान में उन्होंने 7, 8, 9 घटित कर दिए। ये तीन उदीर्ण स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही संभव है। ये तीन स्थान भी मिथ्या दृष्टि के ही संभव है लिखा उन्होंने, ऐसा क्यों लिखा? नहीं नहीं वो तो वाक्य ही गलत है। उसके बाद क्या लिखा है? 7 का स्थान होता नहीं नहीं वो 7 वाला स्थान तो मिथ्या दृष्टि के ही होता है ना। वो तो बराबर है, क्योंकि क्योंकि मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि वो जो भंग है मिथ्यात्व के उदय सहित वाले भंग, वो मिथ्यात्व में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होंगे। हाँ चल अभी हम आगे बढ़ते हैं। समय मिथ्या दृष्टि की बात हो गई। इन तीनों स्थान में से सम्यक मिथ्यात्व को कम करके अनंतानुबंधी कषाय को जोड़ देने पर भी जो 9, 8 व 7 प्रकृतियों के 3 उदीर्ण स्थान होते हैं, उनका स्वामी सासादन सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक प्रकृति एक अप्रत्याख्यान कषाय, एक प्रत्याख्यान कषाय, एक संज्वलन कषाय, यानी 3 कषाय। एक सम्यक प्रकृति 3 कषाय, एक वेद हास्यादि युगल में से एक युगल तथा भय और जुगुप्सा प्रकृति को ग्रहण कर 9 का, भय व जुगुप्सा में से एक के बिना 8 का, इन दोनों के ही बिना 7 का तथा उपशम सम्य दृष्टि एवं क्षायिक सम्य दृष्टि की अपेक्षा सम्यक्त प्रकृति को भी छोड़कर 6 का। हमने देखा चौथे में 6, 7, 8, 9 अलग अलग स्थान है। ये 4 उदीर्ण स्थान अविरत सम्य दृष्टि गुण स्थान में पाए जाते हैं। अविरत सम्य दृष्टि के इन 4 उदीर्ण स्थानों में से एक अप्रत्याख्यान कषाय को कम कर देने पर 8, 7, 6 और 5 प्रकृतियों के 4 उदीर्ण स्थान होते हैं, उनका स्वामी संहिता संयत होता है। हमने चौथे में 6, 7, 8, 9 देखे और यहाँ पांचों में एक और कषाय कम कर देना 5, 6, 7, 8 हो जाते। इसके उक्त 4 स्थानों में से एक प्रत्याख्यान कषाय को कम कर देने पर जो 7, 6, 5 और 4 प्रकृतियों के 4 उदीर्ण स्थान होते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त में वे सब तथा, यानी वो कौन से 4 उदीर्ण स्थान होते? 4, 5, 6 और 7 वाले, तो उसमें 4, 5, 6, 7 वो छठे सातवें गुण स्थान में होंगे तथा अपूर्वकरण में 7 के बिना 3 स्थान पाए जाते हैं। हमने देखा ना 8वें गुण स्थान में चार पांच छह वाला स्थान देखा था हमने। कहाँ गया? अपूर्वकरण में सात के बिना तीन स्थान पाए जाते हैं, यानी चार पांच और छह वाला। संज्वलन चतुष्ट में से एक और तीन वेदों में से एक, इन दो प्रकृतियों का स्थान तथा एकमात्र अन्यतर संज्वलन प्रकृति का स्थान, ये दो स्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्राप्त होते हैं। अनिवृत्तिकरण में एक का है और दो का है। तीन प्रकृतियों के स्थान की संभावना ही नहीं है तथा सूक्ष्म लोक की अपेक्षा एक प्रकृति स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में भी होता है, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। नौवे गुणस्थान में एक का स्थान और दो का स्थान, और दसवें में एक ही का स्थान। इन दो गाथाओं की प्ररूपणा करने पर मोहनीय कर्म का स्वामित्व समाप्त होता है, इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ है। देखो, हमने ये स्थानों की बात देखी थी, उसमें तो ज्ञानावरण का तो पांच प्रकृति का एक स्थान है, अंतराय का भी पांचों प्रकृतियों का एक स्थान है, दर्शनावरण में चार का एक स्थान और पांच का एक स्थान होता है, वेदनिया में तो कोई एक ही की उदीर्णा होगी, उसका स्थान नहीं होगा, गोत्र में भी ऐसा ही होगा, और आयु में तो जिसका जो आयु है उसके तो उदीर्णा का एक ही स्थान होगा, कभी कभी बिना उदीर्णा वाला भी होगा। इस तरह से उसके कितने की होती है उसकी बात बताए। अब काल की बात यहां बताएंगे। एक जीव की अपेक्षा काल, एक प्रकृतिक स्थान का उदीरक कितने काल तक रहता है, वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक रहता है। ब्रह्मा एक समय कैसे होगा? हाँ, अपगत वेदी हुआ और एक समय रहकर मर गया, और उत्कर्ष से यानी वहां चतुर्थ गुणस्थान वाला हो गए ना, अवगत वेदी हुआ था तो एक समय के लिए उसका एक कोई कषाय का उदय था, अब वहां से मरकर देव में गया, देव में गया तो गुणस्थान चौथा हो गया, तो चौथे में भी उसको द्वितीयोपशम वाला भी रह सकता है, क्योंकि श्रेणी में मरण हुआ है ना, तो द्वितीय ऑप्शन वाला तो छह सात आठ वगैरह भी हो, उसके चारों भंग हो सकते हैं। तो उसका उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक रहता है। उत्कर्ष से अंतर्मूर्त क्यों? क्योंकि एक प्रकृति हुआ, वो भले वो प्रकृति बदल दी गई पर एक का ही स्थान रहा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, एक प्रकृति स्थान। जब तक एक प्रकृति का उदय है तब तक उसको एक प्रकृति स्थान कहेंगे। यानी दसवें तक उसको एक प्रकृति स्थान कहेंगे। दो प्रकृति स्थान का उदीरक जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक रहता है। दो का यानी नौवे गुणस्थान के पहले समय में दो प्रकृति का हुआ और बाद में मर गया। और ये पूरा ही सवेद भाग है नवे गुणस्थान का, वो अंतर्मूर्त का है, इसलिए उत्कर्ष से अंतर्मूर्त कहता है। चार प्रकृतिक स्थान के उदीरक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। चार प्रकृतिक देखा ना हमने, कि भैजुगुप्सा बिना, परंतु आठवें गुणस्थान में लेना है, एक युगल का उदय है उसका, तो युगल का उदय तो अंतर्मूर्त में पलटेगा, या उसका उदय शुरू और मरण हुआ ये भी हो सकता है। तो एक समय, हाँ, उतरते समय ले सकते हैं ना, आठवें गुणस्थान में एक समय में मरा। उत्कर्ष से अंतर्मूर्त का, चार प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, ये तो हो गया। हमने एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त देखा था हमने। पांच प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाणे, उसमें भी ऐसा ही लेना है, या भय का या जुगुप्सा का ले लेना उसके साथ। छह प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है, मरण की अपेक्षा लगा लेना। सात प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। नौ भय जुगुप्सा की अपेक्षा ने उसमें शुरू हुआ और फिर भी मरण, देखो शुरू होने के बाद भी एक समय में उसका उदीरणा पलटेगी नहीं, अंतर्मूर्त तो रहेगी ही रहेगी। तो एक समय शुरू हुआ और फिर, क्योंकि भय से जुगुप्सा अंतर्मूर्त तो रहेगी, एक बार उदय हुआ तो अंतर्मूर्त तक तो रहेगा ही रहेगा। यानी हम अगर गति बदलती है तो ही हो सकता है कि उसका एक समय में उदय में उठ जाए। आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। नौ और दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक का, काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। दस प्रकृति का हम आवली कह सकते हैं क्या? फिर भी अंतर्मूर्त तो कह ही सकते उसको। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा काल समाप्त तो हुआ, क्योंकि दस प्रकृति को आवली तक ही होगा, परंतु आवली को भी अंतर्मूर्त कहने की पद्धति है। एक जीव की अपेक्षा अंतर, दस प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त। देखो दस प्रकृति कब कहा था हमने, मिथ्यात्व में, एक मिथ्यात्व है, चार कषाय है, एक वेद है, एक युगल है और भय जुगुप्सा दोनों है। तो कहते उसका अंतर कैसे लेना, वो भय जुगुप्सा दोनों की उदीरणा कर रहा था, दोनों का उदय मिट गया, या एक का हुआ या जीरो का हुआ, और फिर वापस उसका उदय शुरू होगा, ऐसा जीव लेना है। तो जघन्य अंतर भी अंतर्मूर्त होगा। यदि भय और जुगुप्सा का एक समय के लिए उदय होता तो एक समय भी कहते, पर ऐसा नहीं लिया। और उत्कर्ष से 266 सागरोपम प्रमाण है। 266 क्योंकि वो मिथ्या तो में रहा नहीं, 266 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा। हम देखते हैं ना तीसरे गुण स्थान में आया बीच में, क्योंकि दस का स्थान तो केवल मिथ्या तो में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है वो। यानी उसके ऊपर के गुण स्थान में रहा वो और फिर नीचे आया, तो ये मिथ्यात्व का अंतर लिया। उत्कर्ष से 266 सागरोपम प्रमाण में बताया है, वो मिथ्यात्व का अंतर, मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर है। और बाकी 10 के स्थान का जघन्य अंतर में भय और जुगुप्सा का उदय मिट गया और फिर वापस चालू हो गए दोनों का, वो लेना। नौ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण है। देखो अंतर अभी हमने देखा था ना, नौ प्रकृतिक स्थान कहाँ है, मिथ्यात्व में भी है, सासाधन में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। तो ये कैसे अंतर घटित किया होगा उन्होंने, देखो अभी नहीं, पांचवे में वो तो उसमें अंतर लेना है ना। हाँ। देखो नौ का कहाँ तक है, चौथे में, तो वो पांचवे में भेजा तो उसके नौ का स्थान ही नहीं रहा। हाँ, पांचवे का काल है, हाँ उत्कृष्ट का, यानी पांचवे में भेजो या छठे सातवें में रखो, परंतु पांचवे में अधिक से अधिक रख सकते हम तिर्यंच में, यानी कुछ कम पूर्वकोटि काल है वो तिर्यंच में लेना, तिर्यंच में पांचवा गुण स्थान। ब्रह्मा समझ में आती बात, नौ का स्थान पहले वाले को है, दूसरे वाले को है, तीसरे वाले को है, चौथे वाले को भी है, नौ में से वो उसका अंतर कब हुआ, वो पांचवे में चला गया, तो अर्लीस्ट पांचवे में कब जाता है, तिर्यंच में, पूर्व कोटि के बाद वो नियम से मर कर वो चौथे में जाएगा, तो चौथे गुण स्थान में जाएगा, तो भले शुरुआत के अंतर मुहूर्त में भयजुगुप्सा का उसका उदय नहीं भी होगा, तो नियम से तो होगा ही होगा अंतर मुहूर्त में, तो यहाँ पूर्व कोटि कुछ कम पूर्व कोटि अंतर उसका घटित हो जाएगा। समझ में आती है बात, तिर्यंच था उसने अंतर मुहूर्त में पांचवा गुण स्थान प्रकट किया, तो उसके नौ का स्थान नहीं रहा, वो मरकर देव में गया, तो देव में शुरुआत में मान लेते भयजुगुप्सा का दोनों का ही उदय नहीं था, ऐसा भी ले सकते हैं, यानी चौथे वाले को वो हम कहेंगे तो सात का स्थान था, परंतु बाद में भयजुगुप्सा का उदय तो नियम से होगा अंतर मुहूर्त में, इसलिए कुछ कम पूर्वकोटि काल उसका अंतर घटित हो सकता है। अब सात प्रकृति के स्थान के उदीरक का अंतर, यानी सात प्रकृतिक स्थान कहाँ तक है, आठ, आठ का देखना, आठ प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाणे, यहाँ पर भी कुछ कम पूर्वकोटि कहा, परंतु हमने देखा था आठ का स्थान पांचवे तक है, पांचवे तक है, तो छठे सातवें में उसको यानी मनुष्य संयत में रखना उसको, वहां भी कुछ कम पूर्वकोटि और कुछ कम पूर्वकोटि में अलग अलग कथन है, आठ के अंतर में हमको मनुष्य में संयत में रखना उसको, हाँ मरण होके देव में गया, तो देव में जाने कर फिर उसका उस आठ का स्थान चालू हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, इसलिए सात प्रकृति के स्थान के उदीरक का जघन अंतर जघन्य से एक समय। अभी सात प्रकृतियों के देखो, छठे सातवें वाले को भी सात प्रकृति का स्थान तो है ही है, तो जघन्य से एक समय, नहीं नहीं जघन्य से एक समय कैसे घटित करते हैं हम, ऊपर के गुण अन्य गुण स्थान में चला गया और वो भय जुगुप्सा का जो कुछ वो अलग हो जाएगा, और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, सात का अंतर कब देखा था हमने, देखो पहले गुण स्थान में भी सात प्रकृति का स्थान है, हाँ छठे सातवें तक है, परंतु हमें ऐसा लेना है कि वो पहले गुण स्थान में उसको मैक्सिमम रखना है और बिना सात का रखना है, यानी पहले गुण स्थान में सात का हो जाए तो भी वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला जो पहले में सात वाला होता है, और बाद में वो मिथ्या तो में ही रहा कायम, यानी वो विसंयोजना किया ही नहीं किया, बिना किया हुआ ही जीव लेना है, और वो मिथ्यात्व में आया है, सम्यक तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में आया है, तो उसके आठ नौ और दस के स्थान रहेगी टोटल, हाँ छह प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर, अभी छह प्रकृतियां आठवें गुण स्थान तक है और वो चौथे से आठवें तक होते हैं छह प्रकृतियों का स्थान, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, क्योंकि पहले तीन गुण स्थान में छह वाला स्थान ही नहीं है, तो उसके एक बार सम्यक तो प्राप्त किया, श्रेणी चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हाँ आठवें तक है छह का, पर श्रेणी चढ़े नहीं चढ़े उसकी बात नहीं है, और पहली बार औपचारिक सम्यक तो प्राप्त किया तो भी छह का स्थान हुआ ही था उसका, ये भी ले सकते ना, एक बार वो अपशमी समय तो प्राप्त किया और मिथ्यात्व में आया, फिर अर्धपुद्गल परिवर्तन तक वहां रहा, ये उसका उत्कृष्ट अंतर हो गया। जैसे छह प्राकृतिक स्थान के उदीरक का अंतरकाल कहाँ है, वैसे ही पांच प्राकृतिक स्थान के उदीरक का अंतरकाल है, क्योंकि पांच प्राकृतिक का उदीरक भी वे पांचवे में, छठे, सातवें में, आठवें में है। चार प्राकृतिक स्थान के उदीरक किसमें? हाँ, परंतु देखो सात में जो उत्पाद पुद्गल कहा था, हाँ ये नहीं, सम्यक दृष्टि था और वो मिथ्यात्व तो में चला गया। छे वाला है, देखो पहले तीन गुण स्थान में छे तक का स्थान ही नहीं था, तो पहली बार औपशमिक सम्यक प्राप्त हुआ और फिर दोबारा मिथ्यात्व तो में कहे तबड़तोप एक अंतर्मूर्त में, तो उसको वो छे का स्थान चालू रहा, छे अंतर चालू हो गया। और उपार्ध पुद्गल पर लास्ट में जब औपशमिक सम्यक के साथ चौथे में गया तो उसका छह का स्थान हुआ। चौथे में गया, पांचवे में या डायरेक्ट संयम में भी बना सकते हैं, भाई जुगुप्सा के विसंयोजन ना, पर सात वाले ने उसको बिना विसंयोजना वाला वो मिथ्यात्व में आया है, ऐसा भी ले सकते हैं। विसंयोजना करके मिथ्यात्व में आना चाहिए भी जरूरी नहीं है, पर मिथ्यात्व में कब हो सकता है, तो विसंयोजना वाले को हो सकता है, पर डायरेक्ट उसने सम्यक तो प्राप्त किया था और फिर मिथ्यात्व में आया है, तो सात का हुआ ही नहीं, आठ नौ दस का ही रहा था। छह प्रकृतियों में हमने देखा था, छह प्रकृति के साथ चौथे वाले को औपशमिक में भी हो सकता है, वो नीचे मिथ्यात्व में आया और फिर लंबे काल तक रहा। जैसे छह का है वैसे पांच का भी है, यानी वो तो पहली बार उसने औपशमिक संयुक्त के साथ पांचवे गुण स्थान में गया, पांच का स्थान हुआ और फिर नीचे मिथ्यात्व में आया। अभी चार प्रकृतिक स्थान के उदीरक का अंतर, चार प्रकृतियों के उदीरक वो छठे सातवें में हो सकते हैं, चार प्रकृतियों का उदीरना वाला छठे सातवें में औपशमिक संयुक्त के साथ संयम प्राप्त करने वाला, जो पांच प्रकृति वाले औपचमिक सम्यक्त के साथ पांचवे में आया था। चार वाला औपचमिक संयम हो गया, औपचमिक सातवें गुण स्थान, हाँ छठे सातवें में चार का स्थान रहा उसका। उत्कर्ष से अर्ध पुद्गल परावर्तन, हाँ फिर से, हाँ
हाँ सिर्फ पहले गुण स्थान में होते हैं,
हाँ फिर दोबारा दस कब होगा,
यानी
फिर मिथ्यात्व में आने आएगा, तो मिथ्यात्व में एक बार आया था दस प्रकृति, यानी मिथ्यात्व में था ही था पहले से, तो दस प्रकृति स्थान जब जब उसके भयजुगुप्सा दोनों का उदय था तब हमने उसको दिया था, देखा था। अब उसका अंतर कैसे करना, फिर अंतर्मूर्त तक भयजुगुप्सा भय का या जुगुप्सा का या दोनों का नहीं ऐसा हुआ, फिर अंतर्मूर्त के बाद दोनों का उदय शुरू हुआ, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त देखा, एक समय वहां नहीं हो सकता।
अच्छा तो मुझे पूछना और है,
हाँ
कि नव प्रकृति स्थान जो है वो कौन से गुण स्थान में है?
पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। देखो हमने एक टेबल आपको ये बताया था, ये वाला लिखा आपने, ये वाला जो टेबल तैयार करो आप,
नहीं हमने नहीं लिखा है। अच्छा बाद में लिखेंगे,
हाँ
अभी आठ प्रकृति कौन से गुण स्थान में है?
देखो आप यहाँ देख कर ही आप मुझे ही बता सकते हैं, ये पहला गुणस्थान, ये दूसरा गुणस्थान, ये तीसरा गुणस्थान, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवा, ये आठवां और ये नौवां, दसवें में तो एक ही है। देखो पहले गुण स्थान में आप लिखिए, ये बाद में तो लिखना रह ही जाता है। यानी पहला गुण स्थान है उसमें सात आठ नौ दस, ये चार स्थान है। दूसरे में
सात आठ नौ,
सात आठ नौ, तीसरे में भी सात आठ नौ, तो उसके कारण अलग अलग है। चौथे में छह वाला भी हो सकता है, छह सात आठ और नौ। पांचवे में
पांच छह
सात आठ। अब छठा सातवा इकट्ठा लेना, छह सात, उसमें हमने क्या देखा था, चार पांच छह सात। अब आठवें में चार पांच और छह। नौवे में हमने देखा था कि हाँ, दो का स्थान और एक का स्थान, इसे ने एक और दो। दसवें में एक का ही होगा, ये स्थानों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रकृतियों, जो उदयना रूप है यानी उदय रूप है। यानी ये हमारे सामने है तो उसका अंतर घटित करने के लिए हमें आसान हो जाता है। अब फिर मैं पढ़ती हूँ एक जीव की अपेक्षा अंतर। देखो अभी दस प्रकृति के स्थान के उदीरक का अंतर, यानी दस वाला स्थान पहले में ही है तो उसका मिनिमम अंतर यानी पहले में ही रहते हुए दोनों का उदय था भय जुगुप्सा का, उसमें से वो अकेले भय का या अकेले जुगुप्सा का या दोनों से रहित वाला हुआ और फिर वापस उसमें आया, तो अंतर मुहूर्त में उसका मिनिमम अंतर हो सकता। उत्कर्ष से दो छासठ सागर, यानी वो मिथ्यात्व में से औषमिक समय दृष्टि हुआ, फिर उसको वेदक हुआ, फिर वेदक होकर वो फिर छासठ सागर में एक अंतर्मूर्त कम तो तीसरे में आया, फिर और एक छासठ सागर रहा, फिर बाद में मिथ्यात्व में आया, और मिथ्यात्व में होकर भी कभी सात का, कभी यानी कभी नौ का, दस का, फिर उसने दस का स्थान कर दिया। ऐसा हमने उसका उत्कृष्ट अंतर अगर बढ़ाया तो दो छासर सागरोपम होता है। दो छासर सागरोपम में कुछ अधिक भी कह सकते हम, ऐसी कोई बात नहीं। ये दस की बात समझ में आई, अब नौ की, अभी आप हाँ बाकी सब समझ में। अभी हम चार प्रकृति की भी बात देखी थी अभी हमने, हाँ वो छठे सातवें में और आठवें में होता है, तो उसका उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन हो जाता है। और उसका जघन्य से भी अंतर्मूर्त बताया, यहां एक समय नहीं कहा था, छह में पांच में एक समय अंतर देखा था, वैसे चार में एक समय नहीं लिया है। नहीं नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, चार प्रकृति किसान कब होता है हमने देखा था, या तो क्षायिक वाला होगा या उपशमिक वाला हो सकता है, द्वितीयोपशम वाला भी होगा। तो बिना भय जुगुप्सा का वाला है ना, वो तो हमने देखा था, एक कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, और भय जुगुप्सा बिना वाला है। न देखो चार का यानी भैज गुप्सा के उदय से रहित वाला है, वो उदय से रहित वाला था वो, तो पांच का हो गया और फिर वापस चार में आ गया, तो ये जगन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मर भी जाता है तो देव में चला जाएगा, चार का स्थान ही नहीं रहेगा उसको, इसलिए हुँ? यानी वो तो अन्य भय और जुगुप्सा का उदय होकर वापस उसमें बिना का होने के लिए उसको एक अंतर्मूर्त लगेगा। अंतर मिनिमम अंतर घटित करना, पर देव में चार वाला स्थान ही नहीं होगा ना, दोबारा चार का स्थान होना चाहिए, हमरण नहीं लेना है, इसीलिए अंतर्मूर्त लिया। हाँ, अंतर घटित करना। और उत्कर्ष से अर्ध पुद्गल वो तो समझ में आवी। इसी प्रकार से दो प्रकृतियों के और एक प्रकृति के उदीरक के अंतर काल का कथन करना चाहिए। दो प्रकृतियों के उदीरक का अंतर कैसा होगा? दो से एक हुआ और श्रेणी चढ़कर वापस आया, फिर दो का हुआ, इस तरह से उसको लेना है तो अंतर्मूर्त होगा और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल होगा। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा अंतर समाप्त हुआ। अब यही रुकेंगे हम। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। बाय बाय।